أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ناظرین محترم, آپ سب کو نور ولاٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن فہمی بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے, لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کے حقائق اور معانی کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آج جس سورہ کی تفسیر پر ہم گفتگو کریں گے, اس کی فضیلت کے اور تفسیر کے اعتبار سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو انا انزلناہ اس جملے کی معرفت ہو اور جس کو اس جملے کی تفسیر پتہ ہو, اس کی فضیلت اس شخص پر کہ جو نہیں جانتا اس انسان کے برابر ہے جو تمام حیوانات پر افضلیت اور برتری رکھتا ہے. دیکھیں کہ معصومین کے فرامین میں تفسیر قرآن یا تفسیر سورہ کا کتنا معنی اور معیار ہے. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سورہ قدر کی تفسیر ہے, جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہم اپنے گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ سورہ قدر میں کون سے مضامین جو ہیں وہ معرفی ہوئے ہیں.
اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. جی ہاں, تفسیر قرآن ایک ایسا علم ہے کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ماہ رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے تو قرآن فہمی کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سے آشنا ہوں, کیونکہ تفسیر ہی کے ذریعے انسان خداوند متعال کے جو مراد ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ خداوند متعال جو کہنا چاہتا ہے اپنے عباد کو اس کو حاصل کر سکیں اور پھر اس پر عمل کریں. تو ایک چھوٹی سی کاوش یہی ہو سکتی ہے کہ مختلف صورتوں کو محور بحث لایا جائے اور جو نکات ہیں تفسیری اس کو بیان کیا جائے. اب چونکہ ماہ رمضان میں شب قدر بھی نزدیک ہے اور شب قدر انتہائی اہمیت اور بافضیلت رات ہے, تو اسی مناسبت سے سورہ قدر کی تفسیر بہت اہمیت حاصل کر لیتی ہے کہ مومنین جانیں کہ یہ کتنی اہم سورہ ہے اور اس کے اندر کتنے اہم مطالب جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں. آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں, اگر ہم اس چھوٹی سی سورہ میں دقت کرتے ہیں ہمیں تقریباً پانچ موضوع جو ہیں اس سے ملتے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہوئے ہیں. مثلاً ایک موضوع جو اشارہ ہوا ہے وہ یہ نزول قرآن کے بارے میں ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, بس یہاں نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جیسا کہ آگے چل کے بیان ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو یہ ایک موضوع ہے اس کے اندر. تیسرا موضوع یہ ہے کہ اس شب قدر کے اندر, اس بافضیلت رات کے اندر تمام حکیمانہ امر جو ہیں ان کی تقدیر یعنی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں پھر اشارہ ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ تمام امر کو لے کر آتے ہیں ملائکہ اذن پروردگار کے ساتھ اور نازل ہوتے ہیں زمین پر. ایک اور موضوع کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ پوری کی پوری رات جو ہے انتہائی بافضیلت ہے اور سلامتی سے بھرپور ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے. اشارہ ہوتا ہے کہ سلام انہیا حتی مطلع الفجر, کہ طلوع فجر تک جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے مومنین کے لیے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فیض الہی کو کسب کر رہا ہوتا ہے, اور اس فیض الہی کو کسب کرنے کے نتیجے میں انسان کا جو نفس ہے वो क्या है, वो सालिम हो जाता है और इतनी उसके अंदर सलाहियत आ जाती है कि बाद में अपने आप को सालिम रख सकता है अगर वो इरादा कर ले। एक अहम मौजू के जो हम इस सूरह से अख्ज़ कर सकते हैं वो ये है कि शब कदर का राबता बड़ा अमीक है हुज्जत इलाही के साथ, क्योंकि इस आयत में यूँ इरशाद हुआ कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, के मलाइका और रूह जो हैं वो इज़्ने इलाही के साथ नाजिल होते हैं और तमाम खुदा के तायिन शुदा अम्र को लेकर, हुक्म को लेकर। तो अब इसके ज़ैल में जो रिवायात आई हैं वो रिवायात बयान करती हैं कि ये मलाइका हुज्जत इलाही पर नाजिल होते हैं और ये जो हकीमाना अम्र और तमाम उमूर की जो तकदीर और तकदीर साजी की जाती है, तकसीम की जाती है, वो इसी हुज्जत ही के ज़रिए इंजाम पाती है आकर। तो ये एक अहम मौजू हैं कि जो इस सूरह के अंदर इशारा हुए हैं।
अच्छा, जिस तरह सूरह में भी खुद बयान हुआ है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और पहले पहले मौजू की तरफ आपने इशारा भी फरमाया कि कुरान का नुज़ूल होता है, तो इस नुज़ूल कुरान से क्या मुराद है?
अहम सवाल है। मामूलन अगर हम मुआशरे में देखते हैं तो ये कंसेप्ट पाया जाता है कि कुरान नाजिल हुआ यानी ये किसी मकान में मौजूद था और फिर जो है उसको वहाँ से उठाया गया और उठाकर जो है वो पैगंबर के पास ले आए गए। तो ये एक इंतहाई सादा कंसेप्ट है। नुज़ूल कुरान इंतहाई अहम एक मौजू है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होने की ज़रूरत है कि ख़ुद नुज़ूल कुरान से क्या मुराद है। लेकिन हम चूँकि पूरी सूरत के ऊपर एक निगाह डालना चाहते हैं तो मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुरान इल्म इलाही में मौजूद था, कि कुरान ने उसकी तरफ ख़ुद इशारा भी किया है कि फ़ी किताब मखनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहारून, के इल्म इलाही का एक मकान है, मकाम है कि जिसको किताब मखनून कहा जाता है, उसमें ये कुरान इसकी हकीकत मौजूद थी कि जिस तक रसाई किसी की नहीं थी, फ़कत मुतहारून की थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कुरान हिदायत के लिए था, तो खुदावंद मुतआल ने इस कुरान को फिर नुज़ूल किया यानी इसको नाजिल किया। नाजिल होने से मुराद ये है कि वो हकीकत कुरान के जो पहले इंसान की दसरस से बाहर थी अब इस इंसान की दसरस में आ गई है और इंसान जो है अब उसको समझने की कुदरत और ताकत रखता है। यानी उस वक्त जब वो एक जमई हालत में मौजूद था कुरान, उसकी हकीकत के ये बाज़ इस्तिलाहें हैं कि जिनको खोलने की ज़रूरत है लेकिन फ़कत इशारा करके गुज़र रहा हूँ, तो उस वक्त मुतहरून के अलावा कोई भी उसको फ़हम की कुदरत नहीं रखता था। लेकिन खुदावंद मुतआल ने इसको उस जमई हालत से बाहर निकाला और इसको तफसील के मकाम पर लेकर आया। यानी पहले ये एक हकीकत वाहिदा और बसीत हालत में मौजूद था लेकिन बाद में फिर खुदावंद मुतआल ने इस कुरान को तफसील दे दिया, इसको सूरा सूरा कर दिया, इसको आयत आयत में तकसीम कर दिया, तो जब हाँ इसको अल्फाज में ढाल दिया तो ये नुज़ूल कुरान है कि वो आली तरीन हकीकत के जो किसी की दस्तरस में नहीं थी खुदावंद मुतआल ने उसको तनज़ुल दिया ताकि ये हर इंसान की फ़हम में आ सके।
अच्छा, एक जो हमारी फ़िक्र और हम इस बात पे अकीदा भी रखते हैं कि कुरान करीम तदरीजन दर्जा बदरजा पैगम्बर आज़म पर नाजिल हुआ, लेकिन इस सूरे के तनाजुर में जब हम देखते हैं तो ये मालूम होता है एक ही वक्त दफ़ी तौर पे नाजिल हुआ, इसके बारे में आप क्या बयान फरमाएंगे?
जी हाँ, ये एक बहस है उलूम कुरान के अंदर कि आया कुरान जो है वो तदरीजन नाजिल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है, या दफ़ी और एक ही दफ़ा नाजिल हुआ है। अगर हम इस सूरह को देखते हैं और इससे मरबूत बाज़ और आयात को जब तिलावत करते हैं और उसमें दिक्कत करते हैं तो ये वाज़ह तौर पर रोशन हो जाता है कि कुरान जो है वो दफ़ी तौर पर भी नाजिल हुआ है। और जब हम मज़ीद आयात की तिलावत करते हैं, उसमें दिक्कत करते हैं जाकर, तो वहाँ इस बात की भी हकीकत की तरफ इशारा हो रहा होता है कि कुरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और तदरीजन नाजिल हुआ है, और तारीख भी गवाह है इसके ऊपर कि पैगंबर ने जो 23 साल तबलीग की है इस्लाम की, उस 23 साल के अंदर ये कुरान जो है वो नाजिल हुआ है, यानी तदरीजी तौर पर, और उसके शवाहिद मौजूद हैं, तारीख गवाह है इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर मुफस्सरीन ने आकर ये नज़रिया इख्तियार किया कि शब क़द्र में जो कुरान नाजिल हुआ है वो दफ़ई नाजिल हुआ है, और तदरीजन जो कुरान नाजिल हुआ है वो एक और मरतबा है कुरान का कि जो तदरीजन नाजिल हुआ है। मैंने जिस अभी पहली गुफ्तगू में इशारा भी इसकी तरफ किया है मैंने, वो ये है कि कुरान अपनी एक आली तरीन हकीकत रखता है कि जिसके बारे में भी इशारा किया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरुन, वो इल्मे इलाही के एक ऐसे मकाम में था कि जहाँ किसी की रसाई नहीं थी। तो रसाई देने के लिए, 10 रस में देने के लिए खुदावंद मुताल ने इसको क्या किया, तफसील, मकाम तफसील में लेकर आया। और मकाम तफसील से क्या मुरादा, इशारा किया कि उसको सूरों में तब्दील किया, इसको आयात में तब्दील किया, और ये इस तरह अल्फाज में इसको लेकर आया खुदावंद मुताल, ताकि समझने में आसानी हो आकर। तो अब जो तदरीजी नाजिल हुआ है वो कुरान का तफसीली मकाम है कि अल्फाज के साथ बयान हुआ, सूरों की सूरत में बयान हुआ, आयात की सूरत में बयान हुआ, ये जो बयान था आवाम के लिए ये तदरीजी तौर पे नाजिल हुआ है। लेकिन जो कल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ एक ही रात में, जो कि शब कदर है, ये हकीकत वो अल्फाज वाली हकीकत नहीं थी, बल्कि रूह कुरान को कल्ब पैगंबर पर नाजिल कर दिया गया, लेकिन वो तफसील की हालत में नहीं था। दुरुस्त है, बस नुज़ूल दफ़ई के अंदर मकाम तफसील नहीं है उसमें, लेकिन जब पैगंबर तबलीग कर रहे हैं और ये आयात तदरीजन नाजिल हो रही हैं, तो वहाँ पर मकाम तफसील है, यानी जिब्राइल आता है खुदावंद मुताल के इज़्न से, और वो हकीकत कुरान जो कल्ब पैगंबर पर भी नाजिल हुई थी और इल्म इलाही में भी मौजूद है, वो फिर अल्फाज की सूरत में और तफसील की सूरत में पैगंबर के सामने पेश करता है, और पैगंबर फिर उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। बस यूँ आकर जो है वो मुफस्सरीन ने इसको हल करने की कोशिश की है कि अल्लामा तबातबाई भी इस नज़रिए के कायल हैं, और इसके अलावा बाज़ दूसरे मुफस्सरीन भी इसी नज़रिए को मानते हैं।
अच्छा, सूरह क़द्र में एक मौजू जो है वो ये कि उमूर इंसान को मुकद्दर किया जाता है, तो बाज़ बुजुर्गान का और बाज़ इंसानों का ये फ़िक्र है कि भाई हम मजबूर हैं और नाउम्मीद हैं क्योंकि हमारी तकदीर तो मुअय्यन की गई, या इसमें कोई इंसान का अख्तियार भी शामिल हाल है?
जी हाँ, कुरान में इसकी तरफ इशारा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी इस सूरा में बयान किया कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, के अम्र इलाही को लेकर नाजिल होते हैं। और एक और आयत है सूरह दुखान की, आयत नंबर 3-4, ये यूँ इरशाद हो रहा है वहाँ पर कि इन्ना अनज़लना हो फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़रीन, फिर आगे चल के इरशाद होता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस मुबारक रात के अंदर जो हकीमाना अम्र हैं पूरे के पूरे यहाँ पर क्या होते हैं, इनके बारे में फ़ैसला होता है, युफ़रक़ु यानी इसके बारे में फ़ैसला किया जाता है। तो अब ये बात तो रोशन हो जाती है हमें सूरह दुखान की आयत को भी तिलावत करके और सूरह क़द्र को भी तिलावत करके कि ये एक ऐसी रात है जिसमें इंसान की तकदीरें जो हैं वो मुअय्यन होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खुदावंद मुताल शब क़द्र में पूरे साल की तकदीरें मुअय्यन कर रहा है तो इंसान का जो है वो इख्तियार उससे सल्ब हो जाता है। एक चीज़ को अगर मद्देनज़र रख लें तो ये मसला हल हो जाता है, वो ये कि खुदावंद मुताल इंसान की जब भी तकदीर लिखता है उसके अमल के मुताबिक लिखता है, यानी खुदावंद मुताल कभी भी इंसान की कोई ऐसी तकदीर नहीं लिखता कि जिसको खुदा ने तय किया हो लेकिन इंसान का इरादा ना हो। हाँ, ये दुरुस्त है कि इंसान अपने उस इरादे की तरफ बाद में मुतवज्जे होता है, लेकिन खुदा चूंकि खालिक है, खुदा चूंकि इल्मे गैब रखता है, जानता है, और लिहाजा खुदावंद मुताल उसके मुताबिक शब क़दर में उसके नामा आमाल में लिख देता है कि ये इंसान अपने इख्तियार से फ़लाना नेक काम करेगा और फ़लाना गुनाह करेगा जाकर। ना ये कि चूंकि खुदावंद मुताल ने लिख दिया है तकदीर में, अब इंसान ने वो काम करना ही करना है चाहे उसका इख्तियार ना हो। ना, खुदावंद मुताल ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इसी एतबार से भेजा है कि इंसान को इख्तियार दिया है, इंसान अपने तमाम अफ़आल जो है वो इख्तियारी तौर पर अंजाम देता है। और खुदावंद मुताल चाहता भी ये है कि मेरा बंदा अपने इख्तियार से मेरी बारगाह में आए। अगर वो मासियत कर रहा है तो अपने इख्तियार से करे, अगर वो इबादत कर रहा है, मेरे क़ुर्ब की तरफ कोशा है और जस्तजू कर रहा है, तब भी वो अपने इख्तियार से करे। तो ये तकदीर जो लिखी जाती है, चूँकि उसने पहले भी अपने आमाल अंजाम दे दिए हैं, उसके मुताबिक उसकी जो है वो फितरत पे कुछ असर पड़ चुका है और आगे भी चल के इसने आमाल अंजाम देने हैं और इसने अपने लिए एक फ़ज़ा बना रखी है आकर, तो उस एतबार से खुदावंद मुताल पूरे साल की जो है वो इंसान की तकदीर जो है वो लिख देता है। लेकिन इंसान के पास इख्तियार मौजूद है, वो अपने शराइत तब्दील कर सकता है, असबाब को तब्दील कर सकता है। जो तकदीर जो है वो शब कदर में लिखी गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो हतमी तकदीर भी हो जो तब्दील ना हो सकती हो। दुआओं की शक्ल में, अपने आमाल को दुरुस्त करने की शक्ल में, किसी भी तरीके से वो अपनी इस तकदीर को जो है वो बदल सकता है। बदलना क्या है, चूँकि तकदीर लिखवाई भी उसने खुद है, चूँकि मैंने जैसा कि बयान किया कि खुदावंद मुताल इंसान के आमाल को देख कर उसकी तकदीर लिखता है, बस अपने आमाल की वजह से उसने खुद लिखवाई है वो तकदीर, दुरुस्त है। अब अगर लिखवा दी है उसने और बाद में पशेमान हो गया है कि मसलन अगर गलत तकदीर लिखी गई है उसकी, तो फिर वो अपने आमाल के साथ उनको जो है वो सही कर सकता है आकर।
अच्छा, ये मौजू इतना वसी है कि आकर एक टॉक शो में बहुत यानी मजामीन ऐसे हैं कि बयान नहीं कर सकते। इसी तनाजुर में आखिरी सवाल है आपसे कि मुकदमे में आपने फरमाया कि एक मौजू उसका सूरह कदर का या शब कदर का इमाम ज़माना से राबता, तो इसको बयान फरमाएं कि क्या राबता है शब कदर और इमाम ज़माना का।
जी, जैसा कि हम इस आयत की तिलावत करते हैं कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि मलाइका और रूह नाजिल होते हैं खुदा के इज़्न से तमाम अम्र को लेकर। तो अब यहाँ पर सवाल इंसान के ज़हन में ये उठता है कि मलाइका नाजिल होते हैं तो किस पर नज़ूल होता है इनका, किन के पास आते हैं ये, और ये जो अम्र लेकर आ रहे हैं किस को देने आए हैं। देखें, बहुत सरी आयत है कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तमाम जो है वो अम्र वो लेकर आते हैं, नज़ूल होता है इनका। तो एक आखिल इंसान सवाल कर सकता है किस पर लेकर आते हैं। तो हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने इसी आयत के ज़िमन में जो है वो हमारी हिदायत फरमाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम यूं इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना लैलतुल क़द्र फ़ी कुल्ले सनतिन, कि लैलतुल क़द्र जो है वो हर साल में पाई जाती है। व इन्नहु यन्ज़िलु फ़ी तिल्कल लैलति अम्रुस्सना, और इस रात में क्या होता है, पूरे साल का जो है वो अम्र और हुक्म जो है वो नाजिल होता है। वलिदालिकल अम्र वुलातन बादा रसूलिल्लाह, अब रसूलुल्लाह अगर हयात हैं, जिंदा हैं, तो मलाइका उन पर नाजिल होते हैं और अम्र जो है वो उन्हीं पर लेकर नाजिल होते हैं। दुरुस्त है, अब अगर रसूलुल्लाह यहाँ से चले जाते हैं इस ज़ाहरी दुनिया से, तो फिर फरमाते हैं इमाम कि इस अम्र के लिए कि जो ये मलाइका लेकर आते हैं, जानशीन हैं रसूलुल्लाह के, तो इब्ने अब्बास कहता है कि मन हूँ, कौन है वो, तो इमाम फरमाते हैं अना व अहद आशारा मिन सुलबी, मैं और मेरे 11 मेरे सुलब से जो मेरे बेटे होंगे। ये जो हैं वो कौन है, जानशीन है पैगंबर के, कि मलाइका शब कदर, हर शब कदर को जो है वो हर साल इनके ऊपर अम्र लेकर नाजिल होंगे। तो ये एक चीज़ बयान हुई। एक और रिवायत में इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहु लयन्ज़िलु फ़ी लैलतिल क़द्र इला वलीयिल अम्र तफ़सीरुल उमूर सनतन सना, कि ये जो कहा गया कि शब कदर के अंदर जो हैं वो उमूर मलाइका लेकर नाजिल होते हैं, तो फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में जो है वलीय अम्र की तरफ अम्र सना जो है वो नाजिल होता है। यानी पूरी साल की जो तकदीर लिखी गई है और जो उमूर तकसीम होने हैं, वो सब के सब क्या है, वली अम्र की तरफ नाजिल होते हैं, यानी मलाइका लेकर आते हैं। और एक और रिवायत में इशारा होता है कि शब कदर जो मुतअद्दिद रखी गई हैं, यानी 19 की रात है, 21 की रात है, 23 की रात है, तीन शब कदर जो है वो रिवायात में इशारा हुआ है। तो इसके फ़लसफ़े की तरफ भी एक रिवायत मिलती है हमें कि 19 की रात को तकदीर जो है वो लिखी जाती है, 21 की रात को हतमी होती है और 23वीं की रात को ये नाफिजुल अमल होती है। तो इस तरीके से, और ये सारा काम कौन अंजाम दे रहा होता है, मलाइका लेकर आते हैं वली अम्र के ऊपर, वली अम्र ये जो है उसको हतमी करता है और नाफिजुल अम्र होता है, यानी अमल के मरहले में जो है वो पहुँचते आकर। तो इस एतबार से हम देखें तो शब कदर और इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के दरमियान जो है वो एक राबता बरकरार हो जाता है। एक और रिवायत हमारे पास मौजूद है कि जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अपने मुखालिफीन के ऊपर इस्तदलाल करो वजूद इमाम ज़मान के ऊपर सूरह कदर के ज़रिए। तो सूरह कदर में किस तरीके से हम इस्तदलाल करेंगे, इसी तरीके से कि मलाइका अगर नाजिल हो रहे हैं, हर अम्र लेकर आ रहे हैं तो वो अम्र किस के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये बेहतरीन दलील है इस बात पर कि हुज्जत इलाही जो है वो हमारे इस ज़माने में ज़िंदा है और मलाइका हर साल शब कदर में उनके ऊपर नाजिल होते हैं।
माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, नहायत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने सूरह कदर की तफसीर को बयान फरमाया और ये बयान फरमाया कि तकदीर मुअय्यन होने से ऐसा नहीं है कि इंसान मजबूर है, लेकिन अख्तियार रखता है। नाज़िम मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बुज़ुर्गवार ने सूरह कदर की तफसीर करते हुए ये बयान फरमाया कि ये जो अवामर मलाइका लेके आते हैं वो वली अम्र की खिदमत में लेके आते हैं, लिहाजा शब कदर में जो हमारे मुकद्दर मुअय्यन होते हैं वो तमाम तकदीरें इमाम असर वली खुदा के महज़र में ले जाते हैं मलाइका, लिहाजा हमें इस रात से भरपूर इस्तफादा करना चाहिए। चूँकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।